श्रीमद् भगवद गीता अध्याय दूसरा श्लोक संख्या 60। यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्यतिः इन्द्रियाणि भ्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि मनुष्य की इंद्रियां इतनी बलवान और अनियंत्रित है कि अर्जुन वे मनुष्य के मन को अब पूरी तरह से हार लेती है, चाहे वो बुद्धिमान ही क्यों ना हो। विपश्चितः का अर्थ है कि उस व्यक्ति का जो सारा सारिया सद सद विवेक ज्ञान जो है उसका हरण इन इंद्रियों के द्वारा किया जाता है जो कि अनियंत्रित है। और सही है, हम देखते हैं कई बार कि हमारी अनियंत्रित इंद्रियों के कारण ही है हमारा मन या बहुत अलग अलग प्रकार के दुख भुगतता है। जैसे कई बार कुछ देखने की हमारी बहुत इच्छा हो जाती है आंखों से और परिस्थितिवश हम उस चीज को देख नहीं पाते तो मन को दुख हो जाता है। पांच ज्ञानेंद्रिय हमारी कि जिसके द्वारा हम इस भौतिक जगत के अलग अलग चीजों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो आंखें है, नासिका है, जिभा है, स्पर्श है, रूप रस गंध, जिनके द्वारा हम उनका उपभोग लेते हैं, उन ज्ञानेंद्रियों के कारण मन भ्रमित हो जाता है। कहा जाता है कि किसी विषय के प्रति अगर मन आसक्त हो तो वो विषय के प्रति खींचने वाली जो हमारी इंद्रियां है वो निश्चित रूप से हमारा पतन का कारण होती है। और शास्त्र में इसके कई उदाहरण मिलते हैं, विशेष करके पांच प्राणियों के बारे में बताया जाता है कि जो अपने एक एक इंद्रिय के कारण अपना मन वहां पर आसक्त करके अपने प्राण को गंवा बैठते हैं। जैसे आंखें हर समय कुछ ना कुछ ऐसी चीजें देखना चाहती हैं जिससे मन हमारा संतुष्ट हो, लेकिन इन आंखों का विषय वस्तु जो कि भगवान है उनके प्रति आसक्त नहीं होने के कारण इस भौतिक जगत के सौंदर्य के पीछे हम आसक्त होते हैं और वही सौंदर्य हमारे दुख का कारण बनता है। वे उदाहरण देते हैं पतंग का या मौत जिसे कहा जाता है। पतंग एक कीटक है जो जब गांव में देखते हैं, विशेष करके जब बरसात के दिन रहते हैं, अब घर में छोटा सा दीप जला के लगते हैं तो बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं और वो इतने तेजी से आके उस प्रकाश में चले जाते हैं कि उस ज्योत में वो जल जाते हैं, यानी उस प्रकाश की तरफ आकर्षण दृष्टि से वो आकर्षित हो जाते हैं और वही उनके मृत्यु का कारण बनता है। और हमारे लिए आज सबसे बड़ा वो प्रकाश का ज्योत क्या है? टेलीविजन, इंटरनेट, सिनेमा हाउस, आंखों को देखने के लिए अच्छा लगता है वो A+, B+ जो भी है कुछ देखने के लिए चले जाते हैं और वही मन के पतन का अधपतन का कारण बनता है। फिर बताते हैं नासिका का कार्य है कि अलग अलग गंध का आस्वाद लेना। तो कस्तूरी मृग, हालांकि उसके नाभि में ही कस्तूरी रहती है लेकिन उसे मालूम नहीं पड़ता कि वो उसके पास ही है, और उसे प्राप्त करने के लिए, उसे खोजने के लिए पूरे रेगिस्तान में घूम घूम के अंत में अपना शरीर त्याग देता है। तो उसी प्रकार की हमारी भी हालत है, कई इन भौतिक चीजों के रसास्वाद करने के लिए सूंघते हुए घूमते रहते हैं यहाँ पे। चलो ये होटल में अच्छा पका हुआ होता है, यहाँ पे चले वहां पे चले करते। फिर बताते हैं कि नासिका के लिए उदाहरण दिया जाता है भ्रमर। भ्रमर कमल, जो शरद पूर्णिमा के समय कमल की जो एक सुवास रहती है, गंध रहती है, उसमें वो पूरी तरह से मत्त हो जाता है वो गंध से, और वो वहीं पे मंडराते रहता है उस कमल के इसमें दल में। और जब प्रातः काल हो जाता है, चंद्र निकल जाता है, तो कमल सिकुड़ जाता है पूरी तरह से, बंद हो जाता है, और बेचारा फिर वापस उस कमल में ही अंदर ही अपने प्राण त्याग देता है। फिर बताते हैं स्पर्श। अगर आप दक्षिण भारत कभी जाते हैं या कई लोगों ने अगर पुराने फिल्म देखे होंगे दक्षिण भारत के, तो उसमें कई बार हाथी को पकड़ने की प्रोसेस बताते हैं, किस प्रकार से हाथी को पकड़ना। किसी जंगली हाथी को पकड़ना कोई आसान चीज नहीं है। तो वे क्या करते हैं, एकाध जो मादी हाथी रहती है, नर और मादा, मादा हाथी को भेज देते हो जंगल में, और वो किसी बलशाली हाथी के पीछे पीछे घूमते रहती है। तो हाथी उसके प्रति जब स्पर्श सुख के लिए आसक्त हो जाता है तो उसके पीछे दौड़ना शुरू कर देता है। तो वो हाथनी एक ऐसे जगह पे लेके आती है कि जो पूर्व नियोजित रहती है, जहां पे गड्ढा खोद के रखा रहता है और उसके ऊपर बांस डाले रहते हैं और आर्टिफिशियली जमीन निर्माण किया होता है, और वो बाज से खिसक जाती है, उसको मालूम रहता है। लेकिन जो बड़ा हाथी होता है, जो स्पर्श सुख के लिए मदमस्त होकर उसके पीछे घूम रहा होता है, वो सीधा आके वो गड्ढे में गिर जाता है, और बाद में उस बलशाली हाथी को पकड़ लिया जाता है, केवल स्पर्श सुख के लिए लालायित होके उसकी हालत खराब हो जाती है। एक इंद्रिय अनियंत्रित होने के कारण बेचारा अपने स्वातंत्र को गवा बैठता है। फिर बताते हैं श्रवण, सुनने की बहुत इच्छा रहती है। कोई किसी के बारे में खुसुर फुसुर करता तो कान कुत्ते जैसे खड़े हो जाते हैं हमारे तुरंत, उसको चल रहा है भगवत कथा चलती है तो नींद आ जाती है। सबसे ज्यादा नींद जब कथा शुरू होती है तब आती है। और किसी के बारे में कुछ चल रहा हो, कोई हीरो हीरोइन या किसी के लफड़े के बारे में, तो दोनों कान आंखें सारे पूरे एकदम सतेज हो जाते हैं। तो ये उसके जैसा है जैसे हिरन। हिरन क्या करता है, पहले जमाने में हिरन को पकड़ने लिए गोली नहीं मारते थे दूर से, जो व्याध रहता था हंटर शिकारी, वो बैठ के सुंदर बांसुरी बजाता था, और वो बांसुरी की धुन सुनकर हिरन उस धुन की ओर आकर्षित होकर उसके नजदीक आता था। जैसे ही वो नजदीक आया उसके तीर के मर्यादा में, तो तुरंत शिकारी तीर मार के उसको मार देता था। तो हिरन अपने कांड के कारण अपनी स्वतंत्रता या अपनी जान गंवा बैठता है। और एक प्राणी है जो बेचारा अपनी जिह्वा के कारण अपने प्राण खो बैठता है, कौन होगा वो? बंगाली लोगों को तो मालूम होना ही चाहिए, कौन सा? मछली। मछली हालांकि जो पकड़ने वाले रहते हैं हुक में कुछ लगा के दाना लगा के डाल देते पानी में, और बेचारी मछली समझती कि कुछ खाने की चीजें करके उस हुक में अपने जीवा को अटक लेती है। हमारी भी वही हालत है। ये पूरा 5-5.5-6 फुट का जो शरीर है हमारा, इस 1.5 इंच की जीवा के वजह से यहाँ वहां घूमते रहता है, कहाँ अच्छा मिलता है, कहाँ खाने के लिए ठीक है, वहीं पे वो खींच के लेके चला जाता है। जैसे देखते हैं बड़े बड़े नाव है, उसको टर्न करने के लिए एक छोटा सा यंत्र रहता है, रडार कहते हैं उसको, चाहे 3 किलोमीटर की क्यों ना नाव हो, इतनी बड़ी बड़ी है ना युद्ध की नौका है, उसका रडार बहुत छोटा सा इतना सा रहता है, वो पूरे नाव की दिशा बदल देता है। तो उसी प्रकार से इस मनुष्य शरीर की एक रडार है ये जीवा, जो आपके जीवन का पूरा दिशा ही बदल देती है। अगर ये अनियंत्रित रही तो हो गया, एक बार दांतों का और जीवा का झगड़ा हो गया, दांत बोले पूरे 32 के 32 दांत बोले हम है ना तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, मालूम है ना, दांत की वजह से जीवा की रक्षा होती है। ये बोलते आप पागल हो गए, मैं हूं इसलिए आपकी रक्षा हो रही है। बोले सवाल ही नहीं आता, बोली रुको अभी दिखाती हो करके। एक आदमी जा रहा होता है सामने से, वो जीवा आदमी को गाली बक देती है, सामने वाला आदमी गुस्सा हो जाता है, सीधा एक पंच मार देता है पूरे के पूरे 32 बार। तो वही हालत है हमारी। अगर इस जीवा के ऊपर नियंत्रण ना हो तो व्यक्ति अपने अधः पतन का कारण होता। स्पर्श, रूप, रस, गंध और
शब्द,
ये पांचों विषय है और इन विषयों को भोगने के लिए इंद्रिया है, जिनको हम ज्ञान इंद्रिय कहते हैं। अगर उनके ऊपर का हमारा नियंत्रण चला गया, अगर वो अनियंत्रित हो गई, तो कहा जाता है कि यहाँ पे हरन्ति प्रसभम मनः, जबरदस्ती वो आपके मन को हरण कर लेते हैं और फिर मन पे नियंत्रण नहीं है। और जिसका मन पे नियंत्रण नहीं है वो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाता, कर सकता। और इसलिए भगवान यहाँ पे बताते हैं कि हे अर्जुन, इन इंद्रियों को हमें युक्त करना चाहिए, नियंत्रित करना चाहिए। ताणि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। उस आदमी को कहा जाता है बुद्धिमान या धीर कहा जाता है, जो अपने इन सारे इंद्रियों के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण करता है। कैसे? युक्त आसीत मत पर, जो अपने मन को मुझ में लगाता है उसके लिए ये संभव है कि वो अपने इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है। नहीं तो कोई बोला नहीं मैं कर लूंगा, नाक बंद करके बैठ गया, मुंह फुला के छाती फुला के मैं अपने मन को नियंत्रित करूंगा, होगा नहीं ना, संभव नहीं। क्योंकि मन, भगवान कहते हैं सारे इंद्रियों में अगर सर्वश्रेष्ठ क्या है तो मन, और मन यानी भगवान बोलते मैं स्वयं हूं। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 16वें अध्याय में जहां पर भगवान अपने सारे विभूतियां बताते हैं, जैसे उन्होंने इस भगवत गीता में बताई है, तो उसी प्रकार कई विभूतियां वो उद्धव को बताते हैं। तो उस समय बताते हैं कि सारे इंद्रियों में सबसे सूक्ष्म जो चीज है वो मन मैं हूं। तो अगर मन को नियंत्रित करना है यानी भगवान को नियंत्रित कर लेना, और भगवान को नियंत्रित करना है तो क्या करना पड़ेगा? उनकी भक्ति करना पड़ेगा। यानी मन को नियंत्रित करना है यानी भगवान का आश्रय लेना आवश्यक। और इस कलयुग में मन का या भगवान का आश्रय लेना है तो क्या करना पड़ेगा?
हरे
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। तो इस मन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है भगवान की भक्ति करना। तो कई लोग सोचते कैसे करें, कैसे संभव है, हमें संभव है। और कई उदाहरण है इसके शास्त्र में, कई व्यक्तियों ने अपने जीवन में यह हमें दर्शाया है कि किस प्रकार से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते। यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में 9वें स्कंद के 4थे अध्याय के कुछ श्लोक बताते हैं कि जिसमें महाराज अम्बरीश का वर्णन किया गया है कि उन्होंने किस प्रकार से अपने मन को नियंत्रित किया था। हर एक इंद्रियों को उन्होंने भगवान की सेवा में लगाया था। यहाँ पे वो बताते हैं, सवै मन कृष्ण पदारविंदयो वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत शतकथोदये मुकुन्दलिङ्गालय दर्शने दृशौ तद्भृत्त प्रत्यगात्र स्वरशे अंग संगमम घाणम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत् तुलस्यारसनां तदार्पिते पादो हरेर्क्षेत्रपदानुसर्पणे शिरोऋषिकेश पादाभिवन्दने कामं जदास्तेन तु कामकाम्या यथोत्तमश्लोकजनाश्रयरतिः। तो बताते हैं यहाँ पे कि सबसे महत्वपूर्ण है कि अपने मन को पहले भगवान के चरणों में लगाए, जैसे कि महाराज अम्बरीश सबई मनः कृष्ण पदारविंदयोर, भगवान के श्री चरणों में उन्होंने अपने मन को डाल दिया। और भगवान के जो भी प्रामाणिक भक्त है वो वही प्रार्थना करते कि हे भगवान मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे, आपकी नित्य स्मृति बनी रहे, मैं आपको कभी भूलो नहीं। क्योंकि मन का कार्य है चिंतन करना या चिंता करना। अगर भौतिक चीजों में मन लग जाता है तो निश्चित रूप से वो चिंता में पड़ जाता है, और जब भगवत सेवा में लग जाता है तो वो चिंतन करता है। तो क्या उत्तम है, चिंतन या चिंता? हाँ सो गए क्या सर?
चिंतन
चिंतन। चिता और चिंता में फर्क क्या है? एक अनुस्वार, अगर वो अनुस्वार निकाल दिया तो क्या होता है, चिंता का चिता हो जाता है। तो चिंतन